நாராயண சிவன் நாராயண நாராயண ஆனந்த் 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 ஆனந்த்.
ஜப பிருத்திவி ஈஸ்வர் ஜோ ஹை அப்னே ஆப்கோ சிபாதே க்யூ ஹை माया का पर्दा क्यों डालते हैं, और इसी प्रकार से महात्मा लोग भी अपने पर्दा माया को डालते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, गीता की सातवें अध्याय के 25वें श्लोक में, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाधित मुड़ो इन प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत है मुदम माँ भी जानाती लोको महमुद मध्यम। इसको अर्थ जो है मैं सबको नहीं जीतता हूँ क्योंकि योग माया से आवृत रहता हूँ, इस कारण से मुदो का समय मुझको नहीं जानता है। मैं जो अज और अविनाशी हूँ ऐसे मेरे स्वरूप को गुरु का समूह वस्तु नहीं जानता है। बात यह है कि मूल लोग जो है तो मेरे स्वरूप को और मेरे प्रभाव को जानते नहीं, इस कारण से मैं उनसे छिपकर रहता हूँ, यानी उसके आगे पर्दा डाल देता हूँ। पात्र भी है इसलिए क्यों नहीं पात्र है, भगवान कहते हैं कि वे मेरा तिरस्कार करते रहते हैं मुझको न जानने के कारण से, मुझको भी नहीं जानते, मेरे प्रभाव को भी नहीं जानते। गीता की 9वें अध्याय के 11 के श्लोक में कहा है, अजानति मां मूढ़ा मानुषे तन्मासेतम परम भाव जान तो मन भूत महेश्वरम अवजानती मन मूढ़ा। मूढ़ लोग जो है मेरी अवज्ञा करते हैं यानी मेरा तिरस्कार करते हैं। मानसन तनवासी तन मनुष्य शरीरधारी मनुष्य शरीर को आश्रय करने वाला ऐसा जो मैं हूं, मूढ़ों का समूह मेरा तिरस्कार करते हैं यानी उसको साधारण मनुष्य मान करके मेरे साथ में व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं कि परम भाव में जान तो मम भूत महेश्वर, मैं भूतों का जो महान ईश्वर हूं ऐसे मेरे प्रभाव को नहीं जानते हुए यानी मेरे प्रभाव को न जानने के कारण से ऐसा करते हैं। अब ये समझना चाहिए कि ये कैसे मूड है, तो उसके लिए आगे के श्लोक में बताया गीता की 9वें अध्याय के 12 के श्लोक में, मोगाशा मोग कर्माण मोग ज्ञान विचेत राक्षिण आश्रिन चय प्रकृति मोहनिशा मोगाशा मोग कर्माण मोग ज्ञान विचेत। उनकी जो आशा है वो व्यर्थ है, मरण पर्यंत की आशा नाना प्रकार की करते रहते हैं, फालतू व्यर्थ मान फालतू, संस्कृत में उसी को मोह कहते हैं, अपने फालतू कहते हैं, ने उसको व्यर्थ कहते हैं। मोह आशा मोह कर्म, उनका कर्म जो है वो भी व्यर्थ है, फालतू कर्म करते रहते। उनका जो ज्ञान यानी समझ सकती वो ये सो व्यर्थ है, जिसका विस्तार ऐसे उन्हें आसुरी प्रकृति वालों के विषय में उनकी जो आशा व्यर्थ है, उनका जो कर्म व्यर्थ है, उनकी जो समझ व्यर्थ है, ये देखना हो तो गीता की 16 अध्याय के 4 श्लोक से लेकर के 21 के श्लोक तक देख सकते हो। वे कैसे पुरुष हैं, राक्षसी आसुरी और मोहनीय प्रकृति का आश्रय करने वाले। राक्षसी प्रकृति उसको कहते हैं क्रोध से, द्वेष से दूसरों का अनिष्ट करने वाले, अपने शरीर को रुपयों को भी खर्च करके दूसरे का अनिष्ट करने के लिए तुले रहते हैं, ऐसी प्रकृति वाले वे राक्षसी प्रकृति वाले। आसुरी प्रकृति वाले वे हैं कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के और अपने थोड़े लाभ के लिए चाहे दूसरे का कितना ही नुकसान हो, वे आसुरी प्रकृति वाले। और मोहिनी प्रकृति वाले जो ज्ञान से मोहित हुए, अपने या दूसरे के लाभ हानि की तरफ ख्याल नहीं करते, ज्ञान से मूर्खता से दूसरों का अनिष्ट करते रहते हैं, ये मोहिनी प्रकृति वाले। ये तीनों ही तामसी है और तीनों ही नीचे दर्जे के। ये सब पुरुष भगवान के प्रभाव को भी नहीं जानते हैं कि भगवान का कैसा एक उच्च कोटि का प्रभाव है, और भगवान के स्वरूप को ही नहीं जानते। इस कारण से थी ये भगवान का तिरस्कार करते हैं, और भगवान इसलिए इन सब से अपने को छिपाते हैं। और वास्तव के बीच के ना तो योग माया जो है, माया जो है सो भगवान को क्या छिपा सकती है। जैसे सूर्य को बादल नहीं छिपा सकते, ऐसे परमात्मा को माया नहीं छिपा सकती। जैसे सूर्य के विषय में लोग कहते हैं कि ऐसे बादलों की घोर घटा है, सूर्य आच्छादित हो गया, किंतु सूक्ष्मता से विचार किया जावे तो सूर्य आच्छादित नहीं है, हम लोग ही आच्छादित हो गए। यदि जो बादल है सूर्य से प्रकट होते, पर ये कहा जाता है कि बादलों करके सूर्य आच्छादित हो गया, किंतु विचार करने से, सूक्ष्म विचार करने से ये बात गलत है। हम लोग ही सूर्य, हम लोग ही बादलों से आच्छादित होने के कारण सूर्य को नहीं देख पाते। यहाँ बादलों की घोर घटा है, सूर्य यहाँ नहीं दिखता, किंतु कलकत्ता बंबई आदि दूसरे दूर के नगरों से पूछो तो पूछने से मालूम होगा कि सैकड़ों हजारों जगह सूर्य तो दिख रहा है। एक थोड़ी सी दूर के बीच के मन जहाँ हम लोग कुछ बात करते हैं, वहीं बादलों की घटा छाई हुई है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि थोड़ी से माने 10-20 कोस के वहां बादल छाए हुए हैं, इतने दूर में सूर्य नहीं दिखता, और तो हजारों कोसों से दिख ही रहा है। तो बादलों के द्वारा सूर्य नहीं आच्छादित हुआ है, हम लोग ही आच्छादित हुए। इसलिए जो ज्ञानी जो हैं, ये राक्षसी आसुरी और मोहनी प्रकृति से आच्छादित हो रहे हैं, इसलिए भगवान को नहीं समझते, उसके प्रभाव को, भगवान के स्वरूप को नहीं समझते। किंतु ये कहा जाता है कि सूर्य बादलों से छाया है, तो भगवान का स्वरूप कैसा है जिसको ये लोग नहीं जानते, और उसका प्रभाव कैसा है। भगवान का स्वरूप गीता की 4 अध्याय के 6 श्लोक में बताया है, अजोपि समद्वात्मना भूतानां स्वरूपी सन् प्रकृति स्वामधिष्ठा संभवानात्म माया। इसका अर्थ यह है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, अजोपि समद्वात्मना भूतानां स्वरूपी सन् मैं अज हुआ, जनता सा दिखता हूँ, अविनाशी हुआ विनाश होता सा दिखता हूँ, भूतों का ईश्वर हुआ भी मनुष्य दिखता हूँ, मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके बसवा करके मेरी योग मास है अपने स्वयं आप ही प्रकट होता हूँ। कब प्रकट होते हैं कि यदा यदाई धर्म से गलानी भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजामि हम, जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब पाप की वृद्धि होती है तब तब मैं अपनी आत्मा को रास्ता में यानी अवतार लेता हूँ। क्यों कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म समस्या अपना अर्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्म के प्रचारक है ऐसे जो साधु पुरुष उनका उद्धार करने के लिए, जो दुष्ट पुरुष संसार में अधर्म का प्रचार करते हैं पाप का प्रचार करते हैं उनके विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। ये जो मेरा जन्म है अलौकिक है दिव्य है, मेरा जो स्वरूप है वो अलौकिक है और दिव्य है, मेरा प्रभाव है वह भी अद्भुत और अलौकिक है, ऐसे मेरे परम भाव को न जानने वाले लोगों का जो समूह है वो तो मेरा तिरस्कार करते हैं, क्योंकि तो उनकी जो समझ है वो व्यर्थ है, उनकी क्रिया सब व्यर्थ है और उनकी आशा कामना सब व्यर्थ है, उनकी प्रकृति जो है बहुत नीची श्रेणी की राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, जिनमें एक प्रकार से तामसी प्रकृति होने के कारण से थी, मैं उन सब से छिप करके रहता हूँ। और महात्मा लोग जो है वे भी ऐसे पुरुषों से छिप करके रहते हैं, यदि वे ऐसा प्रचार करें कि मैं महात्मा हूँ तो वे पुरुष खिल्ली उड़ाते हैं और उसके कारण उनका पतन हो जाता है। तो महात्मा लोग भी दूसरों के लिए ही संसार के बीच के वहां चेष्टा करते हैं, दूसरों के विनाश के लिए नहीं, उनके हित के लिए ही महात्मा लोग उनसे छिपते हैं, अपने कोई स्वार्थ के लिए नहीं। अपना स्वार्थ तो ईश्वर में और महापुरुषों में कोई है ही नहीं, न तो उनका कोई कर्तव्य है और न तो उनका स्वार्थ है, उनकी तो सारी क्रिया संसार के कल्याण के लिए होती है। जैसे भगवान ने गीता की तीसरी अध्याय के 22 के श्लोक में बताया है, नवीन पार्थस्थ कर्तव्य त्रिशु लोके सुकिंचन नामावतवावतव्य वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोगों के बीच में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है और कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है कि मुझको अप्राप्त हो उसकी प्राप्ति करनी हुए, ऐसे होने पर भी मैं कर्मों में भरता हूँ, मैंने न्यायुक्त कर्म करता हूँ। यदि हम न भरते हम जातु कर्म तंत्रित नंबर तमाम बर्तन थे मनुष्य पार्थ सर्वस्व, कदाचित मैं सावधान हुआ कर्मों को न करूं, शास्त्र बीज कर्मों का आचरण न करूं, तो सारे जो मनुष्य है मेरे ही बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाऊं। मैं यदि कर्मों का त्याग कर लूं तो लोग कर्मों का त्याग कर दे, मैं यदि विपरीत कर्म करने लगूं तो लोग भी मेरा उदाहरण देकर विपरीत कर्म करने लगे, तो फिर संसार के मां मैं इस संसार का नष्ट भ्रष्ट करने वाला और संसार में वर्ण संकर के पढ़ने करने वाला कहलाऊं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सावधान हूं, सब कोई एक प्रकार से मेरा अनुकरण करते हैं, ऐसी अवस्था के बीच में मैं शास्त्र बीज कर्मों की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ और कर्मों का स्वरूप से त्याग भी कैसे कर सकता हूँ और विपरीत कर्म मेरे से हो ही कैसे सकते हैं। महात्मा जो पुरुष है उनके मां भी स्वार्थ का सर्वथा त्याग है, उनका भी लोग अनुकरण करते हैं। इसी तीसरे अध्याय के 21 के श्लोक में बताया है, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवी तिरोजन है सयत प्रमाण कुरुते लोकस तदन वर्तते। महात्मा पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे पुरुष उसी के अनुसार आचरण करते हैं। परमात्मा पुरुष जिस बात को प्रमाणित मान लेता है सब लोग उसको प्रमाणित मान करके चलते हैं। परमात्माओं के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, यह बात इस गीता की तीसरे अध्याय के 17 के श्लोक में बतलाई है। यस्तु आत्मतिरेवश्चात् दातुं त्रिपतस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में माने शुद्ध आत्मा में परमात्मा में जो तत् है तन्मय है और उसमें तृप्त है और उसमें संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर गीता की तीसरे अध्याय के 18 के स्वरूप में बताया, नियुक्त से करते मार तो ना करते नहीं कष्ट में न तो सर्वभूतेषु कश्चित् अशुभाश्रय। उस महापुरुष के लिए कोई भी कर्म करने के लिए या न करने के लिए प्रयोजन नहीं है। नियुक्त से करते नार्थ न उनको करने करके अर्थ है और न करने करके ही अर्थ है। न तो सर्वभूतेषु कश्चित् अशुभाश्रय, सारे भूतों में किंचित मात्र भी अपने स्वार्थ का अर्थ का आश्रय नहीं है। महात्मा जो पुरुष है उस परमात्मा में हर वक्त मस्त है, वहां कोई बात की कमी नहीं है और उसको कोई कर्तव्य भी नहीं है। फिर भी वह कर्मों में बरतता है, क्यों? लोक संग्रह के लिए। लोग जो चारों तरफ में बिखर रहे हैं उनको परमात्मा के स्वरूप में इकट्ठा करने के लिए, शास्त्र विपरीत जो मार्ग है उससे बचाने के लिए और शास्त्र के अनुकूल में लगाने के लिए, जिससे उनका परम हित हो, कल्याण हो। तो इन श्लोकों की हमें ये सब बात दिखलाई, नहीं तो ईश्वर को कोई कर्तव्य है और न कोई प्राप्तव्य है। इसी प्रकार से थी, न कोई महात्माओं के लिए कर्तव्य है और न उनके वहां कोई कमी है, कोई उनके वास्तव कोई प्राप्तव्य है। वास्तव में उनके करने और न करने के लिए उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। संसार में किसी भी प्राणी के साथ में अपना अर्थ सिद्ध नहीं करना है, फिर वे कर्म करते हैं। ईश्वर भी कर्म करते हैं, महापुरुष भी कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? संसार के कल्याण के लिए, लोगों को उन्मार्ग से, विपरीत मार्ग से बचाने के लिए, सतमार्ग में लगाने के लिए उनकी सारी चेष्टा होती है। पाप मार्ग से बचना और सतमार्ग में लगना, ये परमात्मा की प्राप्ति का उत्तम उपाय है। तो उन सबको परमात्मा की प्राप्ति के कार्य में लगा देना है, ये उद्देश्य है। ईश्वर के विशेष प्रभाव की बात गीता की 10वीं अध्याय के 39 के श्लोक में बतलाई है। यद्यूति मस्तत्व श्री मधुर जीत में हुआ तत्त देवार गच्छतम मन तेजोन से संभवन यद्यद विभूति मत्सतम। जो जो विभूति वाली बात है, श्री वाली माने कांति वाली बात है, उर्जित माने जो बल वाली बात है, उन सबको तू मेरा जो प्रभाव है उसके एक अंश का ही प्राग्ञ समझ, एक अंश का ही प्रादुर्भाव समझ। यह बात भगवान ने अर्जुन से गीता की दसवीं अध्याय के 41 के श्लोक में बताई है, जो जो भी विभूति वाली चीज भगवान ने गीता की दसवीं अध्याय के 19 के श्लोक से लेकर के 40 के श्लोक तक बतलाई, और भी गीता के वहां जगह जगह भगवान के स्वरूप का वर्णन आया है, प्रभाव का वर्णन आया है। जो तामसी प्रकृति वाले जो पुरुष हैं, वे उसको नहीं जानते, इस कारण से भगवान उनसे छिप करके रहते हैं, वे पात्र नहीं हैं, और अपात्र के प्रति अपने आप को प्रकट करने वाले की अज्ञता ही सिद्ध होगी, मूर्खता ही सिद्ध होगी, और किसी को लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। इस बात को ख्याल में रख करके ईश्वर और महात्मा लोग जो है छिप करके रहते हैं, जो उनको जान जाते हैं वो उनसे लाभ उठा लेते हैं। जैसे अर्जुन उनको जान गए तो विशेष लाभ उठाया, श्री कृष्ण जी को गोपियां जानती थी तो विशेष लाभ उठाती थी, इसी प्रकार से थी, जिन्होंने उसको जाना वे विशेष लाभ उठाया। ऐसे महापुरुषों के विषय में समझना चाहिए, महापुरुष जो है वे ईश्वर के अनुयायी होते हैं, ईश्वर का ही अनुकरण करते हैं। सदाचार के विषय में, लोक संग्रह के विषय में, जहां तक ईश्वर भी अपने आप को नहीं जानता, और महापुरुष भी अपने आप को नहीं जानते, और कोई कोई स्थान के मां जानने की बात आ जाती है वो पात्र के लिए। अर्जुन सो पात्र था, इसलिए भगवान ने जगह जगह अपने स्वरूप और प्रभाव का वर्णन किया। आखिर में भगवान ने ये बात कह दी, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशरीरातम न च मांगिव श्रूयति। ये जो गुजतम बात तुझको मैंने गीता में बतलाई है, इस रहस्य को जो तपहीन है, जिनके इंद्रियां और मन वश में नहीं है, ऐसे पुरुष को नहीं कहना, उसका कोई असर नहीं होगा।